शांति। अभी हमारे बीच में डॉक्टर सविता दीदी आए हैं, एक बार सभी सविता दीदी का भी स्वागत करेंगे, बहुत बहुत स्वागत है। और बाबा जिस विषय पर अभी बहुत अटेंशन खिंचवाते हैं कि अंतिम समय की सेवा वो हम बच्चों की पावरफुल मनसा से होनी है, तो मनसा सेवा और मनसा सेवा के प्रयोग जो बाप दादा ने हमें बहुत अंडरलाइन कराए हैं, तो सविता दीदी इस विषय पर हमसे रूरिहान करेंगे। सविता बहन ने उदयपुर यूनिवर्सिटी से MBBS किया, लेकिन पढ़ाई के समय भी आपकी लगन इतनी तीव्र थी कि एक बाबा की ही याद में रहती थी, अच्छा पुरुषार्थ करते थे। और पढ़ाई पूरी करके, डॉक्टरी करके पूरा समर्पण हो गए। शुरू के कुछ वर्ष ग्लोबल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के रूप में सेवाएं करते रहे, और फिर तो हमारी परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी के अंग संग, दादी जी के स्वास्थ्य की संभाल आपने दिन रात अथक होके करते रहे। अभी आप शांति वन में निवास करते हैं, अभी भी वरिष्ठ दीदियों दादियों की रथ की जो सेवा है, संभाल है, एक डॉक्टर के रूप में आप दिन रात उनकी मदद करते रहते हैं। विशेष रूप से जो बाबा के अलग अलग विंग्स बने हुए हैं, उसमें जो महिला प्रभाग है उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है, तो जो विश्व की आधी आबादी महिलाओं की कहेंगे, उनकी सेवा के लिए भी आप दिन रात प्रयास करते रहते हैं, अलग अलग स्थानों पर चक्कर लगाते। मधुबन निवासी सभी महारथी भाई बहने चक्रवर्ती है, क्योंकि यज्ञ के ब्राह्मण परिवार की अलग अलग समय पर होने वाले कार्यक्रमों की सेवा आप सब करते रहते हैं। तो सविता बहन हमारे बीच है और उनसे हम मनसा सेवा और उनके प्रयोग इस विषय पर क्लास करेंगे। सविता बहन।
ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को तिलकधारी, तख्तनशीन और ताजधारी बनाया। हम सभी तिलकधारी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं जैसे ब्राह्मण तिलक लगाते हैं ऐसे हम तिलक लगाते हैं, लेकिन हमारा तिलक अविनाशी तिलक है और वो तिलक है आत्मिक स्मृति का तिलक। और केवल आत्मिक स्मृति का तिलक नहीं, लेकिन बाबा ने कहा मैं कौन सी आत्मा हूं, वो स्मृति में रखना, और न सिर्फ स्मृति में लेकिन उसके स्मृति स्वरूप बनना। बाबा ने हमें बहुत अलौकिक स्मृतियां दिलाई हैं, कल्प पूर्व की स्मृतियां दिलाई हैं, और वो स्मृति ही समर्थी लाती है, हमें समर्थ बनाती है, ठीक है ना, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो हम जैसी स्मृति में रहते हैं वैसी स्मृति से हमारी मनसा का स्वरूप बनता है। तो मैं आत्मा, पूज्य आत्मा हूँ, देवात्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, कोठों में कोई, कोई में भी कोई, भगवान के चुने हुए हम रत्न हैं, ये स्मृति में रहना, स्वमान में रहना। यदि हम सारा दिन कोई ना कोई स्वमान के नशे में रहते हैं तो इसका मतलब वो तिलक लगा हुआ है, और वो तिलक लगा हुआ है माना मनसा शक्तिशाली है, और शक्तिशाली मनसा का प्रभाव आसपास के वायुमंडल पर होता है। तो चाहे हम प्रवृत्ति में हैं, गृहस्थ में रहते हैं, चाहे हम सेवा केंद्र पर रहते हैं, तो वहां का वातावरण भी उतना शक्तिशाली बनता है। फिर हम बाबा के तख्त नशीन बच्चे हैं, तो कितने तख्त मिले हुए हैं, एक तो अकाल तख्त है बाबा का, दिल तख्त है और भविष्य में राज्य तख्त। तो हम सभी बाबा के दिल तख्त नशीन हैं और बाबा का दिल तख्त इतना बेहद का है कि उस पर अगर सारे विश्व की आत्माएं बैठना चाहें तो बैठ सकती हैं, लेकिन फिर भी सभी नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि बाबा के दिल तख्त नशीन बनने की शर्त है। क्या शर्त है? एक तो बाबा को सच्चा दिल पसंद है, इसीलिए बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी, सच्चाई सफाई भगवान को बहुत पसंद है और इसीलिए बाबा को हम कहते ही हैं सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य ज्ञान सुनाकर सतयुग की ही स्थापना करते हैं। तो अपने व्यवहार में, प्रवृत्ति में, कारोबार में, आज हम कलयुग में रहते हैं और कलयुग झूठ का युग है, नाम ही इसलिए कलयुग है ना? तो कहीं ना कहीं दिन भर में हमसे श्रीमत के विरुद्ध कोई भी कर्म हो जाता है मानो, तो बाबा हमें श्रीमत देते हैं कि सच्चाई सफाई से बाबा को बता दो। आपने वो चार्ट बाबा को दिया अपना सारे दिन का, आपका आधा वही खत्म हो जाता है और जो रहा हुआ है उसके लिए भी बाबा आगे के लिए आपको शक्ति देते हैं ताकि आपसे फिर वो गलती दोबारा ना हो। लेकिन यदि हम वो चार्ट बाबा को नहीं देते तो फिर वो विकर्म का दंड हो जाता है, 100 गुना दंड होता है। बाबा कहता है अगर ब्राह्मण बनने के बाद हम कोई ऐसी अवज्ञा करते हैं और भगवान के सामने उसे सच्चाई से नहीं रखते हैं तो फिर पाप कर्मों के बोझ के कारण वो आत्मा बाबा को खींचती नहीं है, यानी दिल तख्त पर नहीं बैठ सकती है। और दूसरा, कई बार हम चतुराई से चलते हैं, आज की दुनिया में जिसे चतुराई कहते हैं कि हम अपने नाम को बचाने के लिए या अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झूठ का सहारा लेते हैं, हम सोचते हैं चलता है ना ये तो सब। तो ऐसी भी चतुराई बाबा को पसंद नहीं है, इसीलिए उसे भोलानाथ बाबा कहते हैं कि भगवान जो है वो भोले बच्चों को पसंद करते हैं। फिर दूसरा बाबा को चाहिए एक बाप दूसरा ना कोई, जिनकी ये धारणा है कि बाबा ही मेरा संसार है। भले ही हम संसार में रहते हैं, संबंधों में रहते हैं, कार्य व्यवहार में रहते हैं, लेकिन दिल सदा कहाँ लगी हुई है? दिल की लगन सदा एक बाबा की तरफ है। भले ही अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करते हैं लेकिन बाबा कहता है उसे ये तेरा है, ट्रस्टी बन करके, निमित्त बन करके अपने सब संबंधों को, अपने कार्य व्यवहार को निर्वाह करना और बाकी मेरा तो एक शिपावा दूसरा ना कोई, ये धारणा है तो हम बाबा के दिल तख्त नशीन है। और जितना बाबा के साथ हमारा कनेक्शन है, क्लियर कनेक्शन है और रिलेशन है, उतना हमें बाबा की शक्ति मिलती है और हमारी मनसा शक्तिशाली होती है। और बाबा ने हमें ताजधारी बनाया है, ताजधारी भी हम वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी बनने वाले हैं। तो वर्तमान में विश्व सेवा के जिम्मेवारी का ताज है, तो बाबा के हम सभी बच्चे विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व सेवाधारी हैं। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए हम तन मन धन से सेवा करते हैं, 3 विधि मनसा वाचा कर्मणा बाबा बताता है। तो जो हम तन से सेवा करते हैं वो सेवा बहुत सहज है क्योंकि कर्मेंद्रियों से कर्म करने का हमें अभ्यास है। तो कोई भी सेवा केंद्र पर कार्यक्रम होता है या जो भी, हम अपनी प्रवृत्ति में भी बाबा की सेवा समझकर जो भी करते हैं वो सहज रूप से करते हैं। ऐसे ही धन में भी हम यथाशक्ति सभी बाबा के कार्य में सहयोगी हैं। बाबा कहता है कि अपने ही तन मन धन से हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं और भगवान के इस विश्व परिवर्तन के कार्य में हम सहयोगी हैं। और ब्रह्मा बाबा की भुजाएं हैं, सहस्त्रों भुजाएं हैं बाबा की, तो वो किसकी यादगार है? ब्रह्मा की कहते हैं सहस्त्रों भुजाएं हैं। तो अकेले ब्रह्मा बाबा या अकेले शिव बाबा इतने बड़े विश्व के परिवर्तन का कार्य नहीं करते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण आत्माओं की भुजाएं सहयोग उसमें है। तो इसीलिए हर एक महत्वपूर्ण है इस विश्व कल्याण की मशीनरी में, हर एक महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि जो हमारे वरिष्ठ हैं, हमारी दादियां हैं, वही विश्व सेवाधारी हैं, लेकिन चाहे प्रवृत्ति में हैं, चाहे कुमार हैं, चाहे कुमारी हैं, चाहे समर्पित हैं, जो भी, जैसे कहते हैं किसी मशीन में कोई पुर्जा अगर ढीला हो जाता है तो वो मशीनरी कैसे काम करती है? उसके काम करने की क्षमता पर, स्पीड पर असर आ जाएगा, हो सकता है कि वो काम करना बंद भी कर दे। तो एक एक आत्मा, चाहे वो बच्चा भी है, उसका भी इस विश्व कल्याण के कार्य में महत्व है। तो हम सभी विश्व सेवाधारी हैं और विश्व सेवाधारी बनने का सहज जो साधन है वो मनसा सेवा है। मनसा सेवा सूक्ष्म है, जैसे मैंने कहा तन, अगर हम तन से सेवा करते हैं, कर्मणा सेवा करते हैं, धन से सेवा करते हैं, उसका हमें प्रत्यक्ष फल दिखाई देता है, स्थूल है। लेकिन जो हम मनसा सेवा करते हैं वो सूक्ष्म है, इसलिए अदृश्य है। आप मनसा सेवा कर रहे हैं उसके परिणाम तुरंत तो दिखाई नहीं देते हैं, देते हैं? देखो, इस भौतिक जगत में भी जो सूक्ष्म है वो अदृश्य है, लेकिन उसके प्रमाण मिलते हैं तो हम उसकी शक्ति को स्वीकार करते हैं कि हाँ ये कार्य कर रही है। विज्ञान भी जितना सूक्ष्म में जा रहा है उतना ही शक्तिशाली है। ऐसे ही बाबा कहता है एक स्थान पर बैठे हुए आप विश्व की किसी भी आत्मा तक पहुंच सकते हो मनसा के द्वारा, इतनी पावर है संकल्प शक्ति की, ये स्पीड तेज है। वैसे जाएंगे तो शायद नहीं जा सकते, दिन लग जाए, महीने लग जाए, और इतनी आत्माओं तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। मनसा सेवा के द्वारा हम एक ही समय में विश्व के ग्लोब की सारी आत्माओं को सकाश दे सकते हैं। देखो, विज्ञान के साधनों में अगर हम टेलीफोन देखते हैं तो पुराने जमाने में कैसे टेलीफोन होते थे, और आज के जो मोबाइल फोन है वो खाली टेलीफोन नहीं है, एक तो उसका आकार बहुत छोटा है, आप आराम से उसको लेकर के कहीं भी आ जा सकते हैं। पहले का साधन ऐसा होता था कि आप वहीं खड़े होकर बात कर सकते हैं, है ना, उसके अलावा कहीं मूव नहीं कर सकते। अब आप दुनिया के किसी भी कोने में ले जा सकते हैं और सिर्फ बात ही नहीं करते हैं, उसको आप कैमरे की तरह यूज करते हैं, उसे आप टेप रिकॉर्ड की तरह, हाँ MP3, उसमें कोई भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, मतलब पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है एक छोटे से मोबाइल के अंदर। और पुराने जमाने में जो कैसेट होते थे वो कैसेट बाद में CD में बदले, और अब CD किसमें बदल गई है, एक छोटे से चिप में। उसमें कितने गीत होते थे और चिप में कितने गीत होते हैं, आप हजारों, डिपेंड करता है कितने GB की वो चिप है, उसमें आप हजारों गीत भर सकते हैं। तो जितना सूक्ष्म हुआ उतना शक्तिशाली हुआ कि नहीं हुआ? पहले के युद्ध के साधन और आज के युद्ध के साधन, एक बॉम्ब से कितना बड़ा विनाश होता है, हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब। तो यही मनसा की शक्ति है। आज हम अंतरिक्ष यान देखते हैं, सैटेलाइट हैं, दुनिया के किस कोने में क्या हो रहा है मैं अपने घर में बैठकर वो सब देख रही हूँ, वो सीन आ रहा है, वो आवाज आ रही है, अदृश्य कम्युनिकेशन है, इनविजिबल कम्युनिकेशन है। वो सैटेलाइट से जो वेव्स ट्रांसमिट हो रही हैं वो हमें दिखाई देती हैं, लेकिन दुनिया में कितनी फास्ट गति से संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है, तो हम उसको मानते हैं कि हाँ विज्ञान हमें वो प्रमाण दे रही है। तो बाबा हमेशा कहता है कि जब साइंस ऐसा कमाल कर सकती है तो क्या साइलेंस की शक्ति ऐसा कमाल नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे मन की तरंगे भले अदृश्य हैं, आप जो सोच रहे हैं वो भले आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जहां आपने उसको टारगेट किया है वहां वो काम करता है, और उसके लिए मनसा पावरफुल चाहिए। अगर पावरफुल मनसा नहीं है, जैसे हमने 0 वाट का बल्ब जलाया, 100 वाट का बल्ब जलाया, 1000 वाट का बल्ब जलाया और एक लाइट हाउस है, फर्क होता है। 0 वाट का बल्ब कितनी रोशनी देता है, 100 वाट का बल्ब एक कमरा रोशन कर सकता है, 1000 वाट का बल्ब एक मैदान रोशन कर सकता है और एक लाइट हाउस मीलों तक जहाज को दिशा दिखा सकता है। तो अगर मेरी मनसा इतनी शक्तिशाली है तो फिर एक सेकंड में हम इस संकल्प की शक्ति द्वारा जिस आत्मा को जो संदेश देना चाहे, जो शक्ति देना चाहे, जितना शांति देना चाहे, बाबा कहता है आप हिम्मतहीन को हिम्मतवान बना सकते हो, निराश में आशा का संचार कर सकते हो, चाहे भले अपने स्थान पर बैठे हो, उसको भाग्य बनाने की प्रेरणा दे सकते हो, उसके व्यर्थ संकल्पों को समर्थ संकल्पों में बदल सकते हो, उसके संशय बुद्धि को आप निश्चय बुद्धि बना सकते हो। ये शक्ति है हमारे संकल्पों में, और खासकर जो पवित्र आत्माएं हैं, है ना, ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनकी मनसा जो पावरफुल होती है, जो कार्य कर सकती है, और उसमें भी बाबा कहता है एडिशन चाहिए, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना हो, तभी वो मनसा शक्ति कार्य करती है। अगर मेरी भावनाएं बदलती रहती हैं, ऐसा होता है, हाँ हम देखते हैं कि हम मनसा सेवा करते हैं, हम सभी ब्राह्मण मनसा सेवा करते हैं क्योंकि हम इसके महत्व को जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसके वो परिणाम देखने में नहीं आते। कारण क्या है कि जो विधि है उस विधि पूर्वक यदि हम वो सेवा नहीं कर रहे हैं तो उसकी सिद्धि नहीं होती है। जो भी हम सूक्ष्म साधन प्रयोग करते हैं उसमें कनेक्शन में जरा भी गड़बड़ होती है, आपका वो साधन काम करता है, नहीं काम करता है। ऐसे ही मनसा सूक्ष्म है, इसीलिए उतना ही रिफाइन भी चाहिए। आप देखते हैं हाँ, जिसके प्रति हमारी शुभ भावना होती है, ज्यादातर उनकी भी हमारे प्रति शुभ भावना होती है, जिनसे हमारे संस्कार मिलते हैं, जिनसे हमारा स्नेह होता है, उनके प्रति मनसा श्रेष्ठ रखना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन जिनके प्रति हाँ, या कहेंगे उन्होंने हमारे लिए कभी कुछ ऐसा व्यवहार कर दिया या हमारे संस्कार उनके विचार नहीं मिलते हैं, उनके प्रति हमारी भावनाएं बदलती रहती हैं, उनको देखते ही मन बदल जाएगा। हाँ, भले ही वो 1 साल पहले उसने कोई बात कही होगी मुझे, लेकिन 1 साल बाद मुझे वो आत्मा दिखाई दी, देखते ही क्या होगा, सारी बात स्मृति में आएगी और मेरी वृत्ति बदलेगी कि नहीं बदलेगी, स्मृति से वृत्ति बदलती है, और मेरी वृत्ति में जरा भी नकारात्मक वाइब्रेशन पैदा हुआ आप बोलते कुछ नहीं है, लेकिन वो पहुंचता है क्योंकि वाइब्रेशन की गति आपकी वाणी की गति से तेज है, वो आत्मा समझ जाती है। फिर आप कितनी भी मनसा कर लो, क्योंकि उसने क्या कैच कर लिया, आपके नेगेटिव वृत्ति को उसने कैच कर लिया। फिर हम सोचते हैं हम इतनी मनसा सेवा करते हैं, इतने वाइब्रेशन देते हैं, लेकिन काम ही नहीं करते हैं। क्यों काम नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे मन की वृत्ति पूर्णतया स्वच्छ नहीं है, बीती हुई बातों की स्मृति कहीं ना कहीं उसमें अभी भी है, वो भी अस्वच्छता है, वो भी सफाई नहीं है। तो जितना मन साफ शुद्ध और स्वच्छ होगा उतना मनसा पावरफुल होगी और वो कार्य करेगी। हम कई बार देखते हैं ब्राह्मण जीवन में ना, जब हम मधुबन में आते हैं और मन में कोई संकल्प करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा बाबा से कनेक्शन ज्यादा पावरफुल होता है, तो जो संकल्प करते हैं वो संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। हाँ, आप किसी को याद कर रहे हैं, हाँ, मानो शांति वन में हैं और आपको पता है इतना सहज वो मिलेंगे नहीं, पर आपका वो पावरफुल संकल्प है वो कैसे काम करता है, वो आत्मा आपके सामने कहीं ना कहीं से आ जाती है। मेरे को याद है, मैं जब पहली बार यहाँ मधुबन में आई थी तो मुझे लगता था कि ये कोई जादू की दुनिया है, जो सोचो वो हो रहा है। तो ऐसे ही मेरे मन में उस समय ख्याल आया, बहुत समय हुआ था मैंने पकोड़ा नहीं खाया है, मैंने इच्छा नहीं की थी कि मुझे पकोड़ा खाना है, लेकिन जस्ट ऐसे मन में पता नहीं कैसे संकल्प आया कि बहुत समय हुआ पकोड़ा नहीं खाया है। और उसके बाद शाम का भोजन था और शाम के भोजन में पकोड़ा था। तो मुझे वो वंडर लगा। तो ये हमारी मनसा जो है वो अगर पॉजिटिव है तो इतना श्रेष्ठ कार्य करती है। बाबा कहते हैं जैसे वायरलेस सेट, सही समय पर सही व्यक्ति को आपका वो संकल्प पहुंच जाएगा। वायरलेस सेट में ऐसे ही होता है ना, तो कहां भी हम पहुंचाना चाहें, लेकिन हमारी मनसा कमजोर होती है किन्हीं कारणों से, और उसमें सबसे मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्पों पर बाबा ने बहुत बार हमको अंडरलाइन कराया है, लेकिन फिर भी मन में संकल्प तो चलते ही रहते हैं, और यदि वो हमारे रूहानियत के ज्ञान के संकल्प नहीं हैं, तो अवश्य व्यर्थ संकल्प होंगे। ब्राह्मणों को विकारी संकल्प नहीं चलते हैं ज्यादा, थोड़े बहुत चल भी जाते हैं परिस्थितियों के प्रभाववश, अगर हम केयरफुल नहीं हैं तो फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का असर भी कहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी व्यर्थ संकल्प होते हैं। और व्यर्थ संकल्पों का कारण, सबसे मुख्य कारण तो छोटी बोटी बातों को लेकर के हम यूं ही पर चिंतन, इसकी बातें उसकी बातें जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो मन में यूं ही चलती रहती हैं। उसके लिए चाहिए अटेंशन और चेकिंग। जितना अटेंशन चेकिंग होगा उतना ही हमारी मन पर कंट्रोलिंग पावर बढ़ेगी। अगर हम अपने व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप करना चाहें, अगर मेरा ध्यान गया कि मेरा व्यर्थ संकल्प चल रहा है और मुझे स्टॉप करना है, तो क्या हम स्टॉप कर सकते हैं एक सेकंड में, फुल स्टॉप लगा सकते हैं? किसी ने आपको अपमानजनक शब्द कह दिए, मैंने कुछ कहा नहीं क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, मेरी सहन शक्ति है, हमने चुपचाप उस बात को सुन लिया, लेकिन मुझे फीलिंग आ गई। अब फीलिंग आई तो फीलिंग क्या करेगी, व्यर्थ संकल्प चलाएगी। अब उस फीलिंग का असर कितना समय रहता है, घंटों तक रह सकता है, कई दिनों तक भी रह सकता है, और यदि मैंने वो संकल्प चलाए तो मेरी मनसा शक्ति कितनी वेस्ट होती है उसके अंदर, बाबा से योग लगेगा, कनेक्शन रिलेशन बिल्कुल कट। याद करने की कोशिश करेंगे बाबा को, लेकिन याद कौन आएगा, वो आत्मा याद आएगी, होता है ऐसे। अब यहां पर मुझे फुल स्टॉप लगाना है, कैसे लगाएंगे? ये तो रोज की बात है ना, हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां हर दिन कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आती है। हाँ, कभी बच्चे कुछ कह देंगे, कभी सास कुछ कह देगी, कभी पति कुछ कह देगा, या कभी पत्नी कुछ कह देगी, कोई भी। हाँ, लेकिन फुल स्टॉप लगाना है, समाप्त हो गया, हो जाएगा, शुभ भावना रखेंगे, उसको चेंज करना पड़ेगा, परिवर्तन की शक्ति को यूज करना है। तो बाबा ने उसमें दो तीन बातें हमें बताई हैं। पहली बात तो कि हमें ये समझना है कोई ना कोई मेरा हिसाब किताब है, हमने भी कभी उसके साथ ऐसा व्यवहार किया है जो हमें शायद याद नहीं है, तभी आज मेरे सामने ये आ रहा है, तो मेरा ये कर्ज चुक्त हुआ। कर्ज चुक्त होता है तो हम कैसा फील करते हैं, हल्का हो जाते हैं ना, तो वो चेंज किया, ज्ञान को यूज किया। ज्ञान हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, अगर ज्ञान को सही समय पर यूज किया फुल स्टॉप लग जाएगा, फिर संकल्प नहीं चलेगा। समझ में आ गया ना कि इसने ऐसा क्यों किया। फिर दूसरी बात बाबा कहता है, मुझे प्रभावित होना है या मैं विश्व परिवर्तक हूं। अगर कोई आत्मा तमोगुणी पाठ बजा रही है, परवश है, अपने संस्कार की परवश है, तो फिर मेरा कर्तव्य है कि मैं उसके प्रति रहम भाव रखूं, मैं उसके प्रति क्षमा भाव रखूं, है ना। मुझे उसके प्रभाव में नहीं आना है, लेकिन मेरे वाइब्रेशन से मुझे उसको परिवर्तन करना है। तो जब हम ये जिम्मेवारी समझेंगे तो फुल स्टॉप लग जाएगा। और तीसरी बात, साक्षी होकर के हर आत्मा के पार्ट को देखना है। हर एक आत्मा का पार्ट भिन्न है, तो वो शक्ति अगर मेरे अंदर है तब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर मेरे व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। अब मानो विकार का असर हो जाता है, चाहे वो काम विकार है या क्रोध विकार है, ये रही व्यर्थ संकल्पों की बात। लेकिन अब क्रोध भी कोई ना कोई कारण से आ ही जाता है, और अगर क्रोध आया तो भी हमने बोला नहीं, सहन कर लिया, लेकिन वही वो क्रोध की बातें मन में चलती रहती हैं, इसने ऐसा क्यों किया, हमेशा ही ऐसी गलती करते हैं, हाँ अगर इनको कहेंगे नहीं, मतलब प्लानिंग चलती रहती है कि अब ऐसा हुआ है तो आगे क्या करना है उसका, और कितने व्यर्थ संकल्प उसमें जाते हैं। ये नेगेटिव संकल्प होते हैं। नेगेटिव संकल्प हमारे मन की शक्ति को व्यर्थ संकल्पों की तुलना में कई गुना नष्ट करते हैं, और एकदम मनसा कमजोर हो जाती है उसके बाद। उसके बाद अगर आप वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करना चाहें तो वो वाइब्रेशन आप तक भी नहीं फैलते हैं, आपको ही शांत नहीं कर सकते, तो वो विश्व की आत्माओं तक शांति कहाँ पहुंचेगी, पहुंचेगी क्या। तो यहां पूरे दिन में मेरी चेकिंग चाहिए, और उन व्यर्थ संकल्पों को, नेगेटिव संकल्पों को समर्थ संकल्पों में हम तब परिवर्तन कर सकते हैं जब हम ज्ञान का विचार सागर मंथन करते हैं। आज जो बाबा ने मुरली में कहा वो सारा हमें याद नहीं रहता है। हम सुनते हैं बाबा की मुरली, अगर हमने पूरी एकाग्रता से सुनी तो फिर भी मुझे बहुत मुख्य पॉइंट्स याद रह जाएंगे, पर अधिकतर ये देखा जाता है कि हम उतनी एकाग्रता से मुरली नहीं सुनते हैं। मुरली सुनते समय हमें एनर्जी मिलती है क्योंकि वो भगवान के महावाक्य हैं। आप और सेंटर पर जाकर अगर सुनते हैं तो और ही अच्छी हमें शक्ति अनुभव होती है मुरली सुनने के बाद, क्योंकि सेंटर का वातावरण भी हमें उसमें सहयोग देता है, और उसके साथ साथ हमें संगठन का भी सहयोग होता है, तो संगठन के वाइब्रेशन भी मुझ आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं। फिर मुझे कुछ याद रहा नहीं रहा भले, लेकिन कुछ घंटे तक वो प्रभाव मेरे मन पर अवश्य रहता है। एक या दो घंटे तक मुरली सुनने के बाद आप कैसा अनुभव करते हैं, हाँ उस समय अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जो मेरी मनसा को हलचल में लाने वाली हो तो भी हम पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, और हमारा व्यवहार भी उसमें पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि मन पावरफुल है। लेकिन अगर मैंने फिर उसको चिंतन नहीं किया, वो एनर्जी सारा दिन नहीं चलती है, दिन में फिर वापस मेरे वही पुराने संस्कार, जैसे ही ज्ञान की शक्ति कम हुई कौन सी शक्ति शुरू हो जाती है, जागृत होने शुरू हो जाते हैं, और शाम तक तो पूरा डिस्चार्ज हो जाते हैं। और अगर हमने शाम के योग का नियम नहीं रखा है, ऐसा होता है कुछ भाई बहने तो पक्का नियम रखते हैं कि आधा घंटा हमें 7 से 7:30 चाहे जो भी हो जाए वो योग करना है, और नुमा शाम का समय विशेष बाबा ने मनसा सेवा का समय बताया हुआ है, क्योंकि उस समय सभी भक्त क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। तो हम अपने भक्तों की मनोकामनाएं, क्योंकि हम ही वो चेतन आत्माएं हैं, बाबा से वो हम शक्ति लेकर के उन आत्माओं को सहज दे सकते हैं। तो आप में से कितने भाई बहने हैं जिनका नुमा शाम का योग का नियम पक्का है, यहाँ आए हैं कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन वहां अपने घर में प्रवृत्ति में रहते हुए भी रोज शाम को आधा घंटा जरूर योग करते हैं। देखो 50% भी नहीं है, तो यहां से मनसा सेवा के लिए, क्योंकि अभी बताया ना अंतिम समय की जो सेवा है, अंतिम समय में और कोई सेवा नहीं कर सकेंगे, और बाबा कई बार कहता है उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं है कि लास्ट में हम सोचेंगे मेरा मन मेरे कंट्रोल में आ जाए, नहीं आने वाला है। अगर पहले से उसका उतना अभ्यास नहीं किया है तो संभव नहीं होगा। तो ये मुझे बिल्कुल पक्का करना है कि बैठ करके पावरफुल स्थिति में, हम कर्मयोगी बनकर योग करते हैं वो अलग है, उसमें वो पावरफुल स्टेज नहीं बनती है जो हम बैठकर जब योग करते हैं पूरी एकाग्रता से। तो एक तो ज्ञान का चिंतन और उसके साथ साथ एकाग्रता की शक्ति चाहिए। एकाग्रता की शक्ति बाबा कहता है मन को जब चाहे जिस स्थिति में स्थित करना चाहे, जितना समय स्थित करना चाहे उतना समय हम अपने मन को स्थित कर सकें। अगर मैं चाहती हूं कि मैं परम धाम में बाबा के साथ बिंदु रूप स्थिति में 15 मिनट का अनुभव करूं, तो 15 मिनट पूरा मेरा मन परम धाम में है बाबा के साथ, ऐसा कर सकते हैं? हाँ, या 1 मिनट रहेंगे परम धाम में, दूसरे मिनट नीचे आ गए, फिर 1 मिनट परम धाम में जाएंगे, फिर दूसरे मिनट ऑफिस में चले गए, इसको एकाग्रता नहीं कहते। और हमारी इसको कैसे बढ़ाएं? वही तो, ये जो एकाग्रता की शक्ति है वो अभ्यास से बढ़ेगी, जिसको बाबा कहता है जैसे हम बॉडी को फिट रखना चाहते हैं तो हम ड्रिल करते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसे ही अपने मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक रूहानी एक्सरसाइज हमें रोज करनी है हर घंटे में। हर घंटे में बाबा कहता है या तो निराकारी, नहीं तो आकारी, और नहीं तो अपने 5 स्वरूपों का अनुभव अवश्य करो, तो मन चार्ज हो जाएगा। चाहे जो भी कर रहे हैं, कितने भी बिजी क्यों ना है मन बुद्धि से, लेकिन घंटे में 1 मिनट भी, 5 मिनट निकालें तो बहुत अच्छा है, लेकिन 1 मिनट भी निकाल करके मुझे अपने मन को ये एक्सरसाइज देनी है कि 1 सेकंड में मेरा मन निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए, 1 सेकंड में मेरा मन आकारी स्थिति में हो जाए, आकारी माना फरिश्ता स्वरूप स्थिति में, और फिर चाहे हम अपने देवता स्वरूप का अनुभव करें, चाहे हम अपने पूरे पूज्य स्वरूप का अनुभव करें, जिस स्वरूप का जिस समय अनुभव करना चाहें, अगर हम रोज ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे मन को वो अभ्यास, जैसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, करते हैं सभी? क्यों हमारे यहाँ हर घंटे में ट्रैफिक कंट्रोल होता है? जब बाबा ने ये इशारा दिया उसके बाद से, वैसे होता था ना हर 2-2.5 घंटे में, दिन में 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल होता है, लेकिन अभी हर घंटे में 1 मिनट गीत बज रहा है वो हमें स्मृति दिलाने के लिए कि अभी हमें अपने मन को वो एक्सरसाइज देनी है। तो जितना हम अभी वो अभ्यास करेंगे तो हमारी अपनी चेकिंग हो जाएगी कि क्या हम अपने मन को सचमुच ला सकते हैं। उतना व्यस्त है मेरा मन इतने संकल्पों में और तुरंत निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए। ऐसा होता है लोग ट्रैफिक कंट्रोल के लिए खड़े तो हो जाते हैं लेकिन शरीर से खड़े हो जाते हैं, मन से नहीं खड़े होते हैं। मन फिर भी वही वही सोच रहा है जो पहले से सोच रहा था, इसको ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कहते हैं। सही तरीके से वो अभ्यास जो बाबा ने मुझे बताया है, उसके लिए जरूर शुरू में कठिनाई होती है ना, किसी भी कार्य को हम शुरू करते हैं वो आसान नहीं होता है, लेकिन जब हम उसे करते रहते हैं तो करते करते फिर हम उसमें कुशल हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं। तो जब ये अभ्यास होगा तो फिर आप देखो 1 सेकंड में आप परम धाम में जितना समय अपने मन को स्थित करना चाहेंगे अवश्य कर लेंगे, और वो जो आनंद आएगा मन नीचे ही नहीं आना चाहेगा। जब भट्टी करते हैं तो घंटों घंटों हम बाबा की याद में बैठते हैं, आनंद आता है नहीं आता है कि बोर होते हैं, क्या कहेंगे, आनंद आता है ना, वो अनुभव होता है तो अपने आप उसका आनंद आता है। लेकिन शुरू शुरू में जो लोग योग शुरू करते हैं उनके लिए योग कितनी कठिन चीज है, हाँ, जरा भी उनका मन नहीं लगता है उस बात में। तो ये हमें करना है, और जितना हम दृढ़ संकल्प से ये अभ्यास करेंगे उसमें हमें सफलता मिलेगी। फिर एकाग्रता की शक्ति से हम देखते हैं असंभव भी संभव होता है। हाँ, हमारे यहाँ शास्त्रों में इसके यादगार बने हुए हैं, हम खुद देखते हैं हमारे यज्ञ में, यहाँ तक कि लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में या लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जो नाम लाते हैं वो किसका कमाल होता है, वो उनके मनोबल का, उनकी मनसा शक्ति का, कि जो काम एक साधारण इंसान नहीं कर सकता है वो काम वो लोग कर जाते हैं। हाँ, एक बालों से ट्रक खींच लेना या ट्रेन खींच लेना आसान काम तो नहीं है, लेकिन कैसे कर लिया उन्होंने। शरीर की ताकत इतनी नहीं है, ताकत किसकी है, मन की। मन शरीर में भी वो ताकत भर देता है, इसीलिए कई बार कहते हैं हाँ मन चाहे तो हमें बीमार कर देगा, मन चाहे तो हमें स्वस्थ भी कर देगा। मनसा के प्रयोग क्या है, हम जो चाहें अपने मन से सिद्ध कर सकते हैं, ये मन में शक्ति है। लेकिन मन का वो स्तर होना चाहिए, इतना मनोबल ऊंचा हो तब वो संभव है। देवी देवताएं जो हैं वहां, बाबा जो जिस तरह की वर्णन करते हैं स्वर्ग का, और बाबा ने बताया वहां योग बल की सृष्टि होती है। तो योग बल की सृष्टि कैसे संभव होती है, मन की शक्ति से ही संभव होती है ना। तो वो आज एकाग्रता की शक्ति से जब हम प्रयोग करते हैं तो आज भी हम उस सिद्धि को अनुभव कर सकते हैं, वो भविष्य की बात नहीं है। और इसीलिए बाबा हमें बार बार याद दिलाते हैं साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो। जितना आप साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करेंगे उतना ही जल्दी बाबा की प्रत्यक्षता होगी। वाणी से या कर्म से बाबा की प्रत्यक्षता नहीं होने वाली है, लेकिन जब मनसा शक्ति से आत्माओं को साक्षात्कार होने लगेंगे। बाबा कई बार कहते हैं जो आदि होना है सो अंत होना है, तब वो समय बाबा की प्रत्यक्षता होगी। जैसे वो दिखाते हैं महाभारत में कि जब अर्जुन और अन्य सभी जो पांडव कौरव थे वो गुरु के पास शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो उस समय गुरु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक चिड़िया को पेड़ पर रख दिया। कहानी तो सभी ने सुनी होगी मैं समझती हूँ। तो वो चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना था, एक एक को बुलाया। युधिष्ठिर सबसे बड़े थे तो सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया, कहा आपको क्या दिखाई देता है। तो उसने कहा मुझे पेड़ भी दिखाई देता है, मुझे पत्ते भी दिखाई देते हैं, डालियां भी दिखाई देती, चिड़िया भी दिखाई देती है। तो गुरु ने कहा तुम हट जाओ, तुमसे निशाना नहीं लगेगा। फिर उन्होंने दुर्योधन को बुलाया, दुर्योधन ने भी वही कहा क्योंकि उसको भी वो सब दिखाई दे रहा था। फिर उन्होंने भीम को बुलाया, फिर उसके बाद अर्जुन को बुलाया। तो अर्जुन ने कहा, सिर्फ उसने ही अलग उत्तर दिया कि मुझे न तो पेट दिख रहा है, न पत्ते दिख रहे हैं, न डालियां दिख रही हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। तब उन्होंने कहा कि तुम निशाना लगाओ, और अर्जुन ने तीर लगाया तो वो सीधा चिड़िया की आंख पर लगा। तो ये है एकाग्रता की शक्ति, कि सिर्फ लक्ष्य दिखाई देता है, लक्ष्य के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता है। तो मन में वही संकल्प हो जिस संकल्प में मैं अपने मन को स्थित करना चाहती हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ माना, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में मन टिक जाए। कितने संकल्प देते हैं हम जब कमेंट्री से योग करते हैं, तो हम वो संकल्प, शुद्ध संकल्प अपने मन को देते हैं ना। तो उस एक शुद्ध संकल्प में अगर मन ठीक गया 10 मिनट तक, तो उस संकल्प में इतनी शक्ति है कि वो जो चाहे सिद्ध कर सकता है। ये मनसा पावर है, और वो प्रयोग हम अन्य आत्माओं पर भी कर सकते हैं और स्वयं पर भी कर सकते हैं। मैंने ऐसे प्रयोग किए हैं और उनमें मुझे सफलता भी मिली है, इसलिए मुझे पूरा निश्चय है कि बाबा जो कहता है वो बिल्कुल सही कहता है, अगर हम सही विधि पूर्वक उसे यूज करते हैं तो। तो मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि हम हॉस्पिटल में थे, जब ग्लोबल हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारा फील्ड पेशेंट का फील्ड रहा है तो हमारे ज्यादातर प्रयोग उनको सहयोग देने से संबंधित थे। तो कई बार इमरजेंसी में ऐसे पेशेंट आते थे हमारे पास, और जब शुरू में ग्लोबल हॉस्पिटल शुरू हुआ था तब हमारे पास बहुत स्पेशलिस्ट नहीं थे, माना इतनी हाईली क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट हों उस समय साधारण डॉक्टर थे। अब जैसे हमने भी MBBS किया हुआ था, जो हमारे साथ ही थे, और उनमें सिर्फ एक ही फिजिशियन थे। तो कई बार ऐसी स्थिति होती थी कि हम ही ड्यूटी पर हैं, हमें ही हैंडल करना है, और हमारे पास उतना नॉलेज तो नहीं है कि इतने सीरियस मरीज को किस तरह से हैंडल करना है। तो ऐसे ही एक पेशेंट आया था, यहाँ ही लोकल था, माउंट आबू का, उसको हार्ट अटैक हुआ था। और कई बार हार्ट अटैक इतना सीवियर होता है कि सिर्फ मिनटों की घंटों की ही बात होती है, ऐसा होता है, जीवन मरण का प्रश्न होता है वो। तो ऐसे में तुरंत उनको इलाज मिला, यहाँ आए तो जीवित तो थे लेकिन अपनी सांस नहीं ले पा रहे थे, मशीन से जैसे सांस देते हैं ना। तो हमारे पास उस समय वो सांस की मशीन भी नहीं थी, उसका एक दूसरा साधन अम्बू बैग बोलते हैं, वो बैग से दबा दबा के ट्यूब में हवा देनी पड़ती थी और उससे उनको चलाना था जब तक कि उनका अपना सांस आने लगे, दवाइयों का इतना इफेक्ट आए और वो अपनी सांस ले सके। तो वो नाइट ड्यूटी में, नाइट ड्यूटी की बात थी, नाइट में तो मैं थी और मैं ये काम कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं जाग तो रही हूँ इनके लिए, तो क्यों ना मैं अपनी शुभ भावना, शुभकामना और बाबा से योग लगा करके इस आत्मा को वाइब्रेशन दूं और फिर देखते हैं इसका परिणाम क्या होता है। वैसे उनके संबंधियों को बता दिया था कि 72 घंटे तक कुछ नहीं कह सकते हैं, बहुत सीरियस कंडीशन है, कुछ भी हो सकता है इस तरह से। और वो अज्ञानी थे, ज्ञान में नहीं चलते थे ऐसे, और अपना जो CCU है उसमें रखा हुआ था उनको। तो हमने ये काम किया, हाँ, सारी रात, सुबह तक उनकी वो मशीन हट गई, जो आर्टिफिशियल वाली थी वो हट गई और उनका अपना नेचुरल सांस चलने लग गया, पर वो होश में नहीं थे। और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट नाइट में आई तब तक वो होश में आ चुके थे, सारे दिन में जो भी उनका ट्रीटमेंट चला। तो उन्होंने जब मुझे देखा, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल में आए थे उस समय हमने अटेंड किया था उनको, और फिर जब मैं दोबारा आई तो उन्होंने मुझे बात की, उन्होंने कहा कि बहन जी, वो रात को जब वो बेहोश थे और हम उसको वो कर रहे थे, उनको क्योंकि आत्मा तो शरीर में है, मन तो कार्य कर रहा है, तो उन्होंने कहा जो आपके बाबा हैं वो मुझे दिखाई दिए ना। अब वो उनके बाबा तो नहीं थे, हमारे बाबा थे ब्रह्मा बाबा जो हैं वो मुझे दिखाई दिए, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम ठीक हो जाओगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस अस्पताल से ठीक होकर के जाऊंगा। तो मैं समझ गई, मैंने कहा हम योग कर रहे थे, तो उस योग का रिजल्ट ये हुआ कि बाबा ने दिखा करके इनको ये श्योर कर दिया। और ऐसा ही हुआ कि वो भले 3-4 दिन सीरियस कंडीशन में ही थे, लेकिन धीरे 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 रिकवर हुए और 15 दिन के अंदर अंदर नॉर्मल उनकी तबीयत हुई और वो अपने अस्पताल से चल करके गए। फिर भले ही वो अहमदाबाद गए, वहां जाकर उन्होंने एंजियोग्राफी कराया, बाईपास सर्जरी भी कराई, लेकिन काफी वर्षों तक मैंने देखा कि वो जीवित थे। और जब भी वो मिलते थे तो वो पैर छूते थे, उनको लगता था इन्होंने हमारे प्राण बचाए हैं। तो वो सचमुच उस आत्मा को उस स्थिति में, जो हमने बाबा को याद करके उनके प्रति संकल्प किए, वो सहयोग मिला उनको। तो ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ऐसे मेरे पास 10 एग्जाम्पल होंगे। बीच में एक स्वाइन फ्लू की बीमारी फैली थी, आप सबने सुना होगा, ऐसे ही उससे संबंधित एक था कि वो बिल्कुल ही डॉक्टर ने जवाब दे दिया उनको, वो ICU में थे और बाद में मुझे कहा गया, वो मेरे से कोई मेरे जानकार थे जो ज्ञान में नहीं चलते थे, लेकिन ऐसे ही कि भगवान को प्रार्थना करो कि ऐसे लोग समझते हैं ना, ये वहां रहते हैं तो अगर ये भगवान को कहेंगे तो शायद भगवान ज्यादा सुनेंगे, ऐसा विश्वास होता। तो उन्होंने कहा आप बाबा को कहो कि बाबा इनके लिए कुछ करे ऐसे। तो बाबा तो हमेशा कहता है कि योग बल से हम आयु बढ़ा सकते हैं। बाबा डॉक्टर का काम नहीं करता है, लेकिन अगर हम पुरुषार्थ करें तो बाबा मदद करता है, ये बाबा की गारंटी है। दवाई का काम नहीं करेगा भगवान ने, ये तो सीधा सीधा मुरली में कहा है। बाबा कहता है कलयुग के फ्रूट हैं दवाइयां, अगर डॉक्टर आपको दवाई लिखते हैं तो दवाई खा लो आप। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बाबा से योग लगाऊंगी आपके लिए, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। ऐसे मैंने उनको हिम्मत बंधाई और फिर मैंने एक घंटा विशेष उस आत्मा के लिए योग किया। ऐसे ही दो तीन दिन किया मैंने और फिर बाद में उन्होंने मुझे फोन किया कि उनको आईसीयू से बाहर ले लिया है और डॉक्टर कहता है ये तो मिरेकल है, स्वाइन फ्लू में ऐसे मरीज तो कभी बचते ही नहीं है। हाँ, ये कैसे बच गए और आईसीयू से बाहर आ गए, मेरे लिए तो ये चमत्कार वाली बात है। और फिर धीरे धीरे 10-15 दिन में वो ठीक होकर के वो पेशेंट डिस्चार्ज हो गए। तो ये हमारी है ना, अगर हम सच्चे दिल से और उस विधि से हम मनसा सेवा करते हैं तो सचमुच वो कार्य करती है। और सिर्फ दूसरों की बात नहीं, मैंने अपने लिए भी, खुद के लिए भी, आप हिसाब किताब तो सभी के होते हैं ना, हमारे अपने भी हिसाब किताब तो हैं ही, अनेक जन्मों के भी, इस जन्म में भी कई जाने अनजाने में हमसे हो भी जाते हैं। तो मेरे को दो परीक्षाएं बहुत अच्छी तरह से मैंने पास की हैं। एक तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था और इतना सीवियर एक्सीडेंट था कि बच नहीं सकते थे, और उसी समय मैं बेहोश हुई। एक्सीडेंट के समय मुझे पता भी नहीं कि एक्सीडेंट हुआ है, कहीं चोट लगी है, कहीं खून आया है, ऐसा कुछ मुझे नहीं मालूम। अस्पताल जब तक पहुंचे और उसके बाद जिसने भी पहुंचाया, मतलब पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने सारा काम किया, स्टिच वगैरह किया जहां भी चोट वोट लगी हुई थी। जब सब कुछ पूरा हो गया उसके बाद मुझे होश आया, तो मुझे दर्द की जरा भी फीलिंग नहीं, जो हुआ उसमें दर्द की बिल्कुल भी फीलिंग नहीं। और उसका कारण था कि हम सेवा से लौटे थे, कहीं बाहर सेवा पर मैं गई थी, नागपुर में सेवा पर गई थी, वहां से मैं लौटी थी उस समय, और अहमदाबाद से बाय रोड आ रहे थे और मैं सो रही थी, मैं आगे की सीट पर बैठी थी और मैं थकी हुई थी तो मुझे नींद लग गई। अब वो पता नहीं ड्राइवर ने क्या गलती की, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने ट्रक से हमारी गाड़ी लगा दी, तो मेरे को ही सबसे ज्यादा चोट आई उसमें और हेड इंजरी हुई थी मुझे उस समय। तो हम बाबा की याद में थे और फिर मुझे नींद लग गई, तो बाबा जैसे कैसे रक्षा करता है वो मैंने उस समय अनुभव किया। और फिर जब मुझे होश आया उसके बाद सीटी स्कैन वगैरह सब किया गया तो पता चला कि अंदर की कोई चोट नहीं है, ये सिर्फ बाहर की चोट थी। और वो स्टिच वगैरह सब फिर भी ऑब्जर्वेशन में रखते हैं 48 आवर्स। लेकिन जैसे ही मेरी आंख खुली, बाहर से देखने में वो चोट इतनी ज्यादा थी कि जो भी मेरे सामने खड़े हुए थे, क्योंकि एक्सीडेंट में कुछ श्योर नहीं होता है, भले उस समय आप बच गए लेकिन आगे आने वाले कुछ घंटों में कुछ भी परिणाम हो सकते हैं। तो हमारे यज्ञ के सभी वरिष्ठ भाई और जो भी हमारी बहनें थी वो सब मेरे सामने थे जब मेरी आंख खुली। तो मेरे को जो वाइब्रेशन मिल रहे थे, पता चलता है ना, जैसे मैंने कहा वाइब्रेशन हमें पहले पहुंचता है, तो मेरे को कोई दर्द नहीं और मुझे तो ये भी पता नहीं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वाइब्रेशन से मुझे लग रहा था कि कोई बहुत है ना, बहुत ज्यादा है और कुछ भी हो सकता है, मतलब उनको डर है कि क्या होगा, ऐसे मुझे महसूस हुआ उनका चेहरा देख करके। लेकिन बाबा की मुझे टचिंग थी, उसी समय मैंने अपने आप को आत्मस्वरूप में अनुभव किया। ये सारी बाबा की मदद थी, मैंने कोई संकल्प नहीं किया और बाबा की टचिंग थी कि सब ठीक हो जाएगा। और मैंने देखा कि किसी के भी वाइब्रेशन का कोई असर मेरे ऊपर हो नहीं रहा था, बल्कि मैं अच्छी तरह से स्माइल कर रही थी और सबसे बात कर रही थी, मुझे लग ही नहीं रहा था कि कुछ होगा ऐसा, मतलब ये मेरे अंदर की फीलिंग थी। उस समय मैं आईसीयू में 2 दिन रही समझो, और बहुत भाई बहने, क्योंकि उस समय बाबा की सीजन चल रही थी, ये जनवरी की बात है, और विदेश के भी बहुत सारे भाई बहने थे, जितने भी सब बड़े थे उनकी मीटिंग चल रही थी और वो सब मुझे देखने के लिए आए, क्योंकि मधुबन में इतने सालों से रहते हैं, जानते हैं, और जैसे ही पता चला ऐसी बात हुई है। कहीं लेश मात्र भी ना, एक सुई क्या बोलेंगे, एक पिन के बराबर भी दर्द की फीलिंग मुझे नहीं थी, और जब थी ही नहीं तो चेहरे पर आने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो लोग देखते थे कि चोट तो बहुत ज्यादा है लेकिन कुछ बहन जी को उसका असर नहीं है ऐसे। तो 10 दिन मैं लगभग हॉस्पिटल में थी और मुझे ऐसा लगता था कि बाबा ने, जैसे मुझे एक तो एक परिवार का बहुत प्यार अनुभव हुआ, वैसे नहीं पता चलता है लेकिन जब कोई ऐसी बात होती है तो दैवी परिवार का स्नेही क्या होता है, वो उस समय वो मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था, बहुत ही अलग तरह का अनुभव था। तो बहुत नए नए बाबा ने मुझे, जब मैं वो बेड पर थी, मुझे अनुभव कराए। और सूली से कांटा तो क्या, मैंने ऐसे फील किया जैसे कि वो कांटे से भी फूल बन गया है ना। मेरे लिए सबकी इतनी दुआएं मुझे मिली उस समय। तो ये हमारी, अगर हम जिसको बाबा कहते हैं ना निश्चय बुद्धि और संशय बुद्धि, अगर हम ऐसे परीक्षा के समय पर भी बाबा के प्रति निश्चय बुद्धि रहते हैं तो कितना सहज हम उसे पार कर जाते हैं। और एक दूसरी स्थिति जो मैंने फेस की वो ये था, शरीर की बीमारी, ये तो एक्सीडेंट था। तो एक बार ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम थी और मैंने चेकिंग कराई, अल्ट्रासाउंड कराया, तो पेट में एक सिस्ट था, 7 सेंटीमीटर का वो सिस्ट था जो सुप्रा रीनल सिस्ट के नाम से डॉक्टर ने डायग्नोज किया। तो फिर उनको डाउट था कि ये नॉर्मल भी हो सकता है और खतरे वाला भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं। तो फिर कहा कि ठीक है, यहाँ तो नहीं होगा, ये तो छोटा अस्पताल है, अहमदाबाद जाओ या बॉम्बे जाओ। अहमदाबाद में बात की तो डॉक्टर ने थोड़ी बड़ी बात की, तो फिर डॉक्टर अशोक मेहता को आप सभी जानते हैं, डॉक्टर अशोक मेहता से बात की हमने, तो उन्होंने कहा आप बॉम्बे आ जाओ। तो इस बीच में ये सारा जो कराते कराते सीटी स्कैन वगैरह, उसमें 2 मास हो गए। तो जब सीटी स्कैन कराया तो डॉक्टर ने देखा सीटी स्कैन की रिपोर्ट में कि ऐसे कोई खतरे वाली बात नहीं लगती है, ये साधारण सिस्ट लगता है। तो फिर मुझे लगा कि अगर ये मुझे समय दे रहे हैं, डॉक्टर ने कहा कि बहुत अर्जेंट नहीं है कि आप सर्जरी कराओ, आप आराम से जब भी आप सोचो आपको ऑपरेशन कराना है आप करा सकती हो। तो मैंने सोचा 2-3 महीने के अंदर जैसे समय सेट होगा उस अनुसार हम कराएंगे, अब कराना है तो इलाज कराना ही है। पर फिर क्योंकि मुझे अनुभव था मनसा सेवा करने का, जब मैं दूसरी आत्माओं के ऊपर प्रयोग करती थी तो मैं सोचती थी खुद क्यों नहीं मैं खुद के लिए भी करूं ये, लेकिन उस एकाग्रता से मुझे वो करना है, वो एकाग्रता की शक्ति से ही वो संभव हो पाता है। तो मैंने उसके लिए थोड़ा स्टडी भी की कि कैसे मुझे करना है इसको, और मैंने वो प्रयोग करना शुरू किया कि मैं योग करती थी और योग करने के बाद अच्छी तरह से 10-15 मिनट बहुत अच्छी एकाग्रता से योग किया, और उसके बाद उसको वाइब्रेशन देते हुए ये सोचती थी कि ये रिड्यूस होती जा रही है और अपने आप खत्म हो जाएगी, एक संकल्प देना शुरू किया। और फिर मैं बॉम्बे गई 2 महीने के बाद, और वहां पर मेरा जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो वो 7 सेंटीमीटर का जो सिस्ट था वो 4 सेंटीमीटर का हो चुका था। तो जब डॉक्टर मेहता ने देखा ये रिपोर्ट तो उनको आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा कि ये 2 महीने में 3 सेंटीमीटर कैसे कम हो गया, आपने कुछ किया है क्या? अब उनकी कोई दवाई तो होती नहीं है, कभी होम्योपैथिक वाले देते हैं पर उनसे कुछ इतना फर्क पड़ता नहीं है। मैंने जरूर ट्राई किया था लेकिन मुझे पता था कि ये ज्यादा रिजल्ट किस चीज का है। तो फिर उन्होंने कहा ऑपरेशन की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो अपने आप ही इतना कम हो गया है, तो आप हर 3 महीने में सोनोग्राफी कराओ और मुझे रिपोर्ट दो और हम देखते हैं आगे क्या होता है, अभी हम आपका ऑपरेशन, एक्चुअली मैं गई थी ऑपरेशन करवाने के लिए और उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। अब नेचुरली मैं उसके लिए बहुत, मुझे पता था कि इसके इतने अच्छे परिणाम हैं, तो मैंने उसको जारी रखा। और फिर ऐसा ही होता था कि हर 3 महीने में जब सोनोग्राफी होती थी तो वो कम होता था, 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर वो सिस्ट कम होती जा रही थी, और विदिन 1.5 ईयर 1.5 साल के अंदर वो सिस्ट अपने आप पूरी तरह खत्म हो गई, ऑपरेशन कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसे रिजल्ट्स बहुत बहुत रेयर होते हैं। मैंने मेडिकल साइंस में इसे मिरेकल मानते हैं वो लोग, कि कोई भी गांठ या सिस्ट अपने आप खत्म हो जाना ऐसा नहीं होता है, उसको ऑपरेट करना ही पड़ता है। लेकिन ये हुआ ये हमारी, अगर हम मनसा शक्ति को उस तरह से प्रयोग करते हैं तो। और यही बात बाबा हमें मुरलियों में कहते हैं कि योग बल से हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। तो कैसे बढ़ा सकते हैं? जरूर शरीर पर वो वाइब्रेशंस का प्रभाव, हमारे जो अंग हैं उस पर वो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपने डॉक्टर गुप्ता जी के क्लास सुने होंगे, वो बताते हैं कि कैसे हमारी एक एक आत्मा के गुण का संबंध हमारे शरीर के एक एक अंग से होता है और उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। आज हार्ट पेशेंट्स के ब्लॉकेजेस जो बिना सर्जरी के नहीं खुलते हैं, वो बिना सर्जरी के कैसे खुल गए सभी जानते हैं ना। बहुत सालों से आप उनको सुनते होंगे, उनके क्लासेस सुनते होंगे। आप में से कौन कौन है जो जिन्होंने ये सुना हुआ है? हाँ जी, अच्छा कल उनकी क्लास हुई तो उन्होंने आपको ये बताया होगा जरूर। हाँ, भले वो ज्ञान का क्लास कराते हैं लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा हेल्थ का भी कराते हैं। कराया कि नहीं कराया? तो वो हेल्थ के बारे में जो मन का प्रयोग है, वो मन की शक्ति से ही ये संभव हुआ। भले ही हम लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, डाइट चेंज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसे वैज्ञानिकों ने बहुत एक्सपेरिमेंट्स पहले भी किए हैं, लेकिन जब मेडिटेशन ऐड करते हैं उसके अंदर, स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू मेडिटेशन ये कहते हैं ना, तो जब हम अपने मन की स्थिति को बदलते हैं तब हमारे शरीर की स्थिति, शरीर के रोग की स्थिति भी परिवर्तन होती है। तो हम उसके प्रयोग स्वयं पर भी कर सकते हैं। तो सिर्फ हेल्थ की बात नहीं है, लेकिन अगर मुझे अपने संस्कार बदलने हैं, अब सबसे बड़ी बीमारी तो मन के संस्कारों की है ना, नकारात्मक संस्कारों की है। और कितने प्रकार के वो देहाभिमान के संस्कार हमारे अंदर होते हैं, तो सबसे ज्यादा योग का प्रयोग मुझे अपने संस्कारों पर पहले करना है। वो संस्कार परिवर्तन होंगे तो तन पर उसका असर अपने आप आने वाला है, क्योंकि मन और तन का गहरा कनेक्शन है। मन स्वस्थ है तो तन स्वस्थ होगा, मन बीमार है तो तन भी बीमार होता है। और यही बात हमारे आसपास के वातावरण के लिए, बाबा कहता है समझो प्रकृति के तत्व सत्व प्रधान बनेंगे तो वो भी हमारी मनसा सत्व प्रधान होगी तो प्रकृति के तत्व सत्व प्रधान होंगे। प्रकृति के तत्वों को आप ज्ञान सुनाएंगे, वाणी के द्वारा सेवा करेंगे उनकी, कैसे सत्व प्रदान करेंगे? और हमारी जिम्मेवारी बाबा कहते हैं सिर्फ तत्वों को सत्व प्रदान करने की नहीं है, लेकिन जो अंतिम समय में प्रकृति की हलचल होने वाली है, उस हलचल के कारण जो आत्माएं शरीर छोड़ेंगी वो तो तमो प्रधान होंगी, उस तमो प्रधान वाइब्रेशंस को भी बदलना। इवन सोल्स किसको कहेंगे? उन्हीं को हम इविल सोल्स कहेंगे ना। उन्हीं के जो वाइब्रेशंस फैलेंगे, अगर हमारी मनसा शक्तिशाली नहीं होगी, कहीं भी हमारे अंदर थोड़ी कमजोरी होगी, तो उन वाइब्रेशंस का प्रभाव हमारे पर हो जाएगा। अभी भी ऐसा होता है, कहीं अशांति हो गई उसका असर हमारे पर आता ही नहीं आता है। क्यों आता है? आना तो नहीं चाहिए, हमारी शांति का असर उनकी अशांति पर होना चाहिए। वास्तव में तो ये होना चाहिए ना। कई बार लोग कहते हैं ऐसे ही होता है ना, विकारों का असर मेरे मन पर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि वातावरण ही ऐसा था। ऐसे ऐसे दृश्य होते हैं या ऐसे ही आज का माहौल है, कहीं ना कहीं तो उसका असर हमारे पर आ जाता है। ये हमारी कमजोरी है, हम विश्व परिवर्तक हैं, हमारा प्रभाव उन पर होना चाहिए। हम अपवित्र आत्माओं को पवित्र बनाने वाले हैं, ना कि उनकी अपवित्रता से अपवित्र हो जाने वाले हैं। तो उस समय भी ये हमारी जिम्मेवारी होगी कि उन तमो गुणी वाइब्रेशंस को हम चेंज कर सकें और उनके प्रभाव से भी बच सकें। आज भी कहीं विनाश का दृश्य होता है, मानो आज भी कहीं सुनामी आ गई या जैसे उत्तराखंड में हुआ मानो, तो जो आत्माएं शरीर छोड़ती हैं उन आत्माओं के प्रति हमें सहयोग देना है, और खासकर उनके रिश्तेदारों के प्रति भी, जो कितना अशांत हो जाते हैं जब इन आत्माओं का शरीर छूटता है, क्योंकि वो अकाले मृत्यु है, अकाले मृत्यु का किसी को पहले से तो मालूम नहीं होता है, तो फिर बाबा कहता है कि मनसा सेवा से आप इन आत्माओं को सहयोग दे सकते हो, आप वाइब्रेशंस को भी चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके पहले हमारे मन पर हमारी कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर चाहिए। अगर हम अपनी ही समस्याओं में उलझे हुए हैं, अपने ही संकल्पों में उलझे हुए हैं, हमारा ही बाबा से कनेक्शन पूरा क्लियर नहीं है, हमारा ही मन एकाग्र नहीं होता है, तो हम मनसा सेवा नहीं कर पाएंगे। तो अभी से ही वो अभ्यास करने की जरूरत है, जो अंतिम समय में एक सेकंड का भी अगर वो पेपर हुआ, बाबा कहता है ना एक सेकंड के पेपर में पास होना, जो पास हो गया वो पास विद ऑनर, और नहीं हुआ तो पास या फेल, ऐसा ही होगा ना। तो इसीलिए अश्वरतन ही पास होते हैं। हाँ, संस्कारों पर कैसे प्रयोग करें? अब मानो मुझे पता है मेरा क्रोध का संस्कार है, हाँ, मुझे गुस्सा आ ही जाता है, तो फिर आप योग कर लो, और योग करने के बाद अपना जो ओरिजिनल संस्कार है उसे स्मृति में लाओ कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वभाव है, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, और फिर उस स्मृति को पक्का करना है। मानो योग के बाद आपने अपने मन को वो संकल्प देकर रखा है कि अगर कोई मेरी बात नहीं मानेगा, आप कोई ना कोई कारण बनता है ना जब मुझे गुस्सा आता है, तो अगर कोई मेरी बात नहीं मानेगा तो भी मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे शांति से व्यवहार करना है, क्योंकि शांति ही मेरा स्वभाव है। ठीक है, अब जब वो स्थिति पैदा होगी तब आपको वो याद आ जाएगा कि आपने योग में अपने आप को क्या समझाया है। समझा? अब एक बार आप फेल हो गए, आपको एक बार में अच्छी तरह याद नहीं आया, आप गुस्सा कर गए, उसके बाद याद आया। दूसरी बार में भी ऐसा हुआ कि आपने मन को समझाया तो है लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं। 10 बार फेल हो गए लेकिन फिर भी आपकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। जितनी तीव्रता से आप गुस्सा कर रहे थे पहले, अब उतनी तीव्रता से नहीं करेंगे, और धीरे धीरे 11वीं बार में ऐसा हो जाएगा कि अब आपको गुस्से के समय ही वो बात याद है और आपने गुस्सा नहीं किया। आपने समझा? वो जो संस्कार जितनी बार में बना हुआ है उसको पलटने के लिए उतना अभ्यास तो करना पड़ेगा। इसीलिए संस्कार इतनी जल्दी नहीं जाते हैं, मेहनत करनी पड़ती है थोड़ा उसके पीछे, जो पक्के कड़े संस्कार होते हैं ना उसके पीछे, नहीं तो वो बार बार इमर्ज होते हैं। आपने सोचा आज तो मैंने मेहनत करके इसको जीता, दूसरे दिन देखा फिर वो संस्कार हाजिर है, लेकिन छोड़ना नहीं है। अगर हम एकाग्रता से उसके ऊपर अभ्यास करते रहेंगे तो वो संस्कार परिवर्तन हो जाएगा, विजय हो जाएगी हमारी। बाबा कहता है कि हमारी शुभ भावना हो पूरी तरह से उस आत्मा के प्रति, और शुभ भावना के साथ मुझे जो संकल्प देना है, माना ये आत्मा स्वस्थ हो जाए, अगर मुझे किसी का कल्याण करना है तो उसका कल्याण हो जाए, इसको भी बाबा का परिचय मिले, इनको भी बाबा का वर्षा मिले, जो हम उसके प्रति करना चाहते हैं वो संकल्प देना है। अब जैसे मैंने सोचा कि वो गांठ है उसका साइज कम हो जाए और खत्म हो जाए, बाबा से योग लगाया उसके बाद वो संकल्प जो मुझे करना है, जो हम उसका परिणाम चाहते हैं वो परिणाम सोचना है लास्ट में, ठीक है, तो वो संकल्प काम करेगा। ओम शांति।
ओम शांति। सविता दीदी ने बहुत ही सुंदर अंतिम समय का पेपर, कौन कौन से आएंगे, कैसे मनसा शक्ति के द्वारा हमको विजय प्राप्त करनी है, प्रैक्टिकल अपने अनुभवों सहित हमें बताया, और कैसे हमको मनसा शक्ति को बढ़ाना है, बहुत अच्छी विधि आपने बताई। तो आज इस भट्टी में हम सभी संकल्प करेंगे कि अपनी मनसा शक्ति को हम अवश्य बढ़ाएंगे। सविता दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जोन के भाई बहनों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, सविता दीदी हमारे जोन की दीदी है, ये हमारे इंदौर जोन की दीदी है ये।
और जब हमने अपना समर्पित जीवन शुरू किया तो कुमारियों की भट्टी वहाँ भाई जी ने रखी थी, तो मैं और शकुंतला बहन को भी आप में से कई लोग जानते होंगे, जानते हैं कोई शकुंतला बहन को? अच्छा, तो हम दोनों बहनें वहां भट्टी करने के लिए गए थे भाई जी के पास, कुमारियों की भट्टी में, और फिर भाई जी ने हमको वहीं रख दिया। तो 6 मास मैंने वहां सेंटर पर इंदौर में सबसे पहले अपना जो समर्पित लाइफ का जो शुरू किया वो इंदौर से शुरू किया, और फिर बाद में ग्लोबल हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट आया तो उसमें डॉक्टर्स की जरूरत थी, तो फिर भाई जी हमको यहाँ मधुबन में खुद छोड़कर गए थे। तब से फिर हम मधुबन में रहे, ये 1989 या 90 की बात है ऐसे।
इसलिए आज हमारे जोन की दीदी मधुबन में क्लास करा रही है, इसलिए बहुत बहुत सविता दीदी का धन्यवाद। अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।